खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो और उसका इत्मीनान आज के दिन में मेरे और आप सबके साथ रहे। सोए हम दुआ करें, क्योंकि जिस दुनिया में, जिस दौर में और जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन लम्हे आएंगे, मुश्किलात का, बहुत सी खबरों का सामना होगा। इसलिए खुदावंद ही है जिस पर हमारी आस होनी चाहिए और उसी की सना गाना चाहिए, क्योंकि वो हर एक का जो उस पर तवक्कल करते हैं खुदावंद खुदा है। तो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें, जितने बहन भाई बच्चे बुजुर्ग आए हैं, सबके लिए तेरा शुक्र हो, और जो नहीं आए किसी सुस्ती, लाचारी, लापरवाही और खुद गर्जी के बायस, उन सबको खुदा खुदा तू बेदार कर, ताकि इस अखीर ज़माने में तेरी ज़रूरत को महसूस करें और तेरा बेटा यीशु मसीह नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से हम सब की हौसला अफजाई कर, उसी के मुकद्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो बहन भाई कलाम खुदा को पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों उसका दो बाप, आज हम 16वीं आयत को पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम 16वीं आयत को सीखें, 15वीं आयत से आपके लिए ये हवाला पढ़ूंगा, ताकि याद दहानी हो जाए कि हमने किस आयत से ख़त्म किया था और कहां से हमने छोड़ा था और कौन सा हिस्सा सीखा था। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कलीसिया को जो इफिसस में रहती थी, कलीसिया से मुराद यानी के वो लोग जो यीशु पर ईमान रखते हैं। कलीसिया के लिए लफ्ज इंग्लिश का जो इस्तेमाल किया गया है चर्च, जिसे हम कहते हैं कि आओ चर्च चलें। बहुत दफ़ा बिल्डिंग की तरफ भी इशारा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो सही तशरी या मतलब है वो है कलीसिया, लोगों का मजमा, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, यहाँ दो या तीन मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा और वो मेरा बदन है, मेरी कलीसिया है। सो 15वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस कहता है, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। इससे पहले कि 16वीं आयत को देखें, 15वीं आयत में खुदा का बंदा यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यीशु मसीह ने अपने जिस्म के वसीला से उस दुश्मनी को जो इंसान और खुदा के दरमियान थी उसको दूर कर दिया, और साथ ही साथ वो तमाम तकाजे, तमाम फरमान, तमाम हुक्म जो इंसान पूरे नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने अपने कुर्बान होने के वसीला से इंसान का रास्ता खुदा तक बनाया और उन तमाम बातों को मकूफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, उन रस्मों को, रिवाजों को जो पुराने अहदनामा में मनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर जैसे काहिन को अपने आप को बर्रे के खून से साफ करना पड़ता था, पाक करना पड़ता था, और सिर्फ काहिन ही था, खुदा का चुना हुआ काहिन जिसे मसा किया जाता था खुदा के हुजूर जाने के काबिल था, और उसे भी अपने आप को पाक और साफ करने की जरूरत थी, और लोग बाहर खड़े होकर काहिन का इंतजार करते थे कि कब खुदा का काहिन, कब खुदा का बंदा वापस आए और हमसे कलाम करे। तो यीशु मसीह ने जो गुनाह की दीवार, जो गुनाह के बायस दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को ख़त्म करके इंसान का अपने साथ क्या करा लिया, मेल करा लिया, सुलह करा दी, और उन्हें नया इंसान बनाया। हम सब नई मखलूक हैं, किस तरह, क्योंकि जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाता है वो नया मखलूक बन जाता है। जितने आप यहाँ पर मौजूद हैं, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है अपना निजात दहिंदा, वो नए मखलूक हैं, नए इंसान। इसके बारे में पालूस कहता है, दूसरा करंथियों मेरे साथ निकालें उसका पांच बाब, उसकी 17 आयत में कहता है, सिखाते हुए, इसलिए अगर कोई मसीह में है, ये उस बात की तरफ इशारा है कि अगर किसी ने मसीह यसु में नई जिंदगी हासिल की है, मसीह यसु को कबूल किया है, अगर कोई मसीह यसु में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, वो तमाम पुरानी चीज़ें, वो तमाम पुरानी बातें, वो तमाम रस्म और रवाज जो इंसान, और वो तमाम हुक्म और वो तमाम शरीयत के ऐसे फरमान जो इंसान और खुदा के दरमियान खड़े थे, जिन्हें इंसान कभी भी पूरा नहीं कर सकता था। जैसे मिसाल के तौर पर 10 हुक्म, अगर हम 9 हुक्मों को पूरी जिंदगी माने और एक तोड़ दें, तो बाइबल क्या कहती है कि जिसने एक हुक्म तोड़ा उसने सारी शरीयत की क्या की, ना फरमानी की। तो वो तमाम बातों को जो पुरानी रस्में, चीजें, जो तकाजे थे, वो जाती रहीं, देखो नहीं हो गई। अब जब हम उन हुक्मों को पूरा करते हैं तो हमें दुगनी बरकत मिलती है, और उसके बायस हमें ये नहीं होता कि हम खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाएंगे। वो सब नई हो गई हैं, नया रिश्ता बन गया, नया रास्ता, नई उम्मीद, नई बरकत, अजीब अजीब नए काम। सबसे बड़ी जो नई बात हुई वो क्या कि आज आप और मैं और जो कोई दुनिया के किसी भी हिस्सा में है जो यीशु पर ईमान लाता है, वो रूहुल कुद्दस का मकदस बन जाता है, यानी रूहुल कुद्दस के अंदर उसके अंदर आ जाता है। तो ये कैसी अजीब और नई बात है। पुराने नाम में ऐसा नहीं था, पुराने अहदनामा में सिर्फ और सिर्फ जिसे खुदा चाहता था इसराइल के खानदान से उसी पर रूह ठहरता था और फिर रूह उनसे जुदा हो जाता था। लेकिन आज के दौर में रूहुल कुद्दस ईमानदारों के अंदर रहता है जो कोई यसु पर ईमान लाता है। इसलिए हमें इस बात को बड़े गौर से समझने की जरूरत है, और सादा सी बात है कि कोई भी मसीही खानदान में पैदा होने से मसीही नहीं बनता, मसीह को कबूल करने से हम मसीही बनते हैं। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है, यीशु पर ईमान लाने की कि तू मेरा निजात दहिंदा है, तूने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। तो इसीलिए अपने आप में उसने हमें एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दी, और यही बात पालूस कहता है, यसु मसीह के कफारा के वसीला से हमें निजात मिली, खुदा तक हमें पहुंचने का रास्ता मिला और हम नए इंसान बने। इसलिए 16वीं आयत को जरा देखें, एफसियों 2 बाप उसकी 16वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया। सलीब पर दुश्मनी खत्म हुई। मेरे साथ एक हवाला देखें, रोमियों 5 बाप उसकी 10 आयत, ये दुश्मनी जो आदम के गुनाह के बायस, ये दुश्मनी जो रूहानी तौर पर हमें मौत थी उसके बायस, ये दुश्मनी जो हमारे और खुदा के दरमियान थी, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने दूर किया, और अपने कफारा के वसीला से, अपनी कुर्बानी देकर उसने हमें खुदा बाप के साथ एक बना दिया, उसके साथ हमें नया इंसान बना दिया, उसके पास जाने का हमें रास्ता बना दे दिया। रोमियो 5 बाप उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बावजूद, क्या लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, कौन थे हम सब जब खुदा के दुश्मन थे, खुदा से क्या लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बच जाएंगे। हमारी सुलह हो गई है, अब हम पर खुदा का कहर नहीं बल्कि खुदा का रहम है। अब हम दोजख की आग में नहीं बल्कि खुदा की हजूरी में। अब हम यसु मसीह से जुदाई में नहीं बल्कि यसु मसीह के नज़दीकी में। अब हम यसु मसीह के रूबरू उसके तख्त के हजूर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बावजूद हम उसके दुश्मन थे, लेकिन खुदावंद यसु मसीह के मौत के बायस उसने दुश्मनी को ख़त्म करके हमें क्या कर लिया? खरीद लिया, हमारी सुलह करवा दी और दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया। दोनों से मुराद यहाँ पर पालूस रसूल कहता है, यानी कि यहूदियों और गैर यहूदियों में जो लड़ाई थी। जैसे आज बहुत दफा दूसरे लोग कहते हैं कि आप पाक हो और हम पाक नहीं। जैसे आज बहुत दफा गिरजे घरों में ऐसा फसाद देखा जाता है, आप हमारे गिरजे में नहीं आते, आप पादरी साहब से नहीं मिलते, आपने पादरी साहब को चंदा नहीं दिया, इस करके आपसे हमारा बोलना चालना नहीं है। सो पालूस रसूल कहता है कि यीशु मसीह के वसीला से इन तमाम छोटी छोटी लड़ाइयों को, झगड़ों को और मजहब परस्ती को और फिर तफरका बाजी को और फिरके बाजी को यीशु मसीह ने ख़त्म करके हर एक कबीले को एक कर दिया। इससे मुराद अगर कोई हिंदू यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो मसीह में क्या है? भाई है। अगर कोई और कबीला, कोई और यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो क्या है? मसीह में भाई है। हाँ वो हिंदू है, सिख है, हाँ मुस्लिम है, कोई भी है, किसी भी जुबान से है, जब कोई यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो खुदा में क्या हो जाता है? मसीह का बदन। और यही बात खुदा का बंदा पालूस इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को बता रहा था कि बेशक एक वक्त में तुम बुत परस्त थे, बेशक एक वक्त में तुम खुदा से दूर थे, बेशक एक वक्त में तुम रूमी खुदाओं को और यूनानी खुदाओं को और बादशाहों को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन अब तुम जिंदा खुदावन खुदा के लोग हो, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया। इसलिए आप सबको भी ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस लम्हा आपने यीशु मसीह को कबूल किया उस ही लम्हा आप की खुदा बाप तक जाने की जो रुकावट थी वो दूर हो गई। आपके और खुदा के दरमियान जो गुनाह का घड़ा था, उसे जो बहुत गहरा घड़ा और खाई थी, उसे यीशु मसीह ने अपने अपने कफारे के वसीला से पुर कर दिया। आपके और हमारे दरमियान जो खुदा के दरमियान जुदाई थी, उसे उसने दूर कर दिया। इसलिए अब हम दोनों को एक तन बनाकर, बहुत से यहूदियों की ये बात थी शुरू शुरू में जब कलीसिया के बारे में पालूस या उससे पहले पत्रस और यहन्ना और दूसरे शिगिर्दों ने तालीम देना शुरू की। आपको याद होगा कि इब्तदाई कलीसिया में ये बात थी। इमाल 10 बाब में जिक्र मिलता है कि पत्रस गवारा नहीं समझता था कि जाकर गैर कौमों को खुशखबरी सुनाए। तो एक दिन यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जिनको पाल ठहराया, जिन तक मैंने तुझे पहुंचने के लिए कहा है, उन तक जाने की जरूरत है, तू उन्हें किस तरह नापाक कर सकता है? इसलिए अगर कोई मसीह को कबूल करता है तो हमें उसे कबूल करने की जरूरत है, ना कि उसकी बेइज्जती या उसे मजाक में उड़ाने की जरूरत है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है वो मसीह का बदन यानी कि कलीसिया है, ख्वाह वो एक है, ख्वाह वो दो है, ख्वाह वो 10 हैं। इसलिए हम ईमानदारों की जिम्मेदारी क्या है? कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से इत्तफाक से रहें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। लेकिन आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, दिन ब दिन मसीहियों की मोहब्बत ठंडी पड़ रही है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, दिन ब दिन मसीहियों पर मुश्किलात आएंगी। दिन ब दिन तशद्दत, मुसीबत, परेशानी, लोगों को जलाया जाना, मारा जाना, गिरजाघरों को तबाह किया जाना, ईमानदारों को कैदखानों में डाला जाना, ये दिन ब दिन बढ़ेगा। इसलिए हमें जिस तरह यीशु मसीह ने कुर्बान होने से पहले अपने शागिर्दों से कहा कि तुम सोते क्यों हो, तो वहां पर उन्होंने क्या कहा कि जिस्म कमजोर है लेकिन रूह जोरावर है। हमें रूह के मुआफिक चलने की जरूरत है, ना कि जिस्म के मुआफिक। इसलिए आज बहुत से मसीही जिस्मानी ताकत में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं, इसीलिए खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते और खुदा के घर में आने से ज्यादा पसंद करते हैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा होना पसंद करते हैं और बात या और काम करना। तो अभी दौर शुरू ही हुआ है और बहुत ज्यादा दौर बिगड़ेगा, इसलिए हम सबको मजबूत रहने की जरूरत है ईमान में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें ऐसे मसीही बनने की जरूरत है जो नूर की मानक चमके, ना के दिखावे के मसीही, ना के बातों के मसीही, ना के नामी मसीही, सिर्फ बड़े दिन पर गिरजे आ गए और चंदा दिया और बात खत्म और सारा साल पूछा ही नहीं। इसलिए आप सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का जो आप सब आते हैं। और जैसे आपने देखा है कि अभी दौर शुरू हुआ, एक स्पीकर नहीं चल रहा, एक दौर आएगा कि जैसे इब्तदाई कलीसिया में लोग छुप कर इबादत करते थे, मेरी दुआ है कि ऐसा दौर ना आए। अगर ऐसा आया तो फिर से ही ईमान का पता चलेगा कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर अपने तन को कुर्बान करके हमें एक कर दिया और खुदा से हमारा मिलाप करा दिया। हमें हर रोज खुदा से बात करने की जरूरत है। हैकल इसीलिए तैयार की गई है कि हम सब उसके हजूर आए। इसलिए जिन तक आप पहुंच सकते हैं, ना के पादरी साहब की ये खिदमत है, ना के ये नौजवानों की ही खिदमत है कि वो बताएं, आप जाकर बताएं कि यीशु मसीह से मोहब्बत करने का सब फल उम्दा है। खुदावंद आपको बरकत दे और आज के सारे दिन में आप सबके साथ रहे और इस सुलह के पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने के वसीला से इंसान का और खुदा का मेल मिलाप करा दिया, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा, वो खां किसी भी कबीले से है, किसी भी नस्ल से है, कोई भी उसका रंग है, कोई भी वो जुबान बोलता है, कोई भी उसका मजहब है, जब यीशु मसीह को कबूल करेगा तो वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं।